अम्बरीश कहने लगे कि हे सुदर्शन चक्र, आप क्षमा कर दीजिए। अब देखो दुर्वासा ऋषि की तरफ से अम्बरीश है, वो स्तुति कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की कि हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम प्रकाशमान तत्वों के स्वामी हो, तुम ही जल हो, तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही सब कुछ हो। सुदर्शन, तुम भगवान के बहुत प्रिय हो। जब जब भी भगवान को दुष्टों का संहार करना पड़ता है, अधर्मियों का नाश करना होता है, धर्म की रक्षा करनी होती है, तब तक वे तुम्हें ही बुलाते हैं। तुम्हारी महिमा अगाध है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, हे सुदर्शन, यदि मेरे जीवन में हमारे कुल परंपरा से ब्राह्मणों की सदा से भक्ति होती आ रही हो तो आप इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य किया है, जरा सा भी कोई अपने धर्म का पालन किया है और कभी भी मैंने ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं किया हो तो आज ये दुर्वासा तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारी आपत्ति से छूट जाए। और सारे गुणों के आश्रय एकमात्र भगवान, यदि वो आज मुझ पर प्रसन्न है तो आज ये ब्राह्मण आपत्ति से छूट जाए। हे सुदर्शन चक्र, आप ऐसा ही उपाय करो। ऐसा वो बोल रहे थे, इतने में सुदर्शन चक्र एकदम शांत हो गया। और शांत होने के बाद दुर्वासा देखे कि आप सुदर्शन चक्र ने मेरा पिंड छुड़ा दिया है। अब दुर्वासा ऋषि स्वस्तिमान सांस लेने लगे। अब उनको ऐसा लगा कि मुझे शांति मिली है। तब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे अम्बरीश, आज मैंने देखा है कि भगवान के भक्तों का प्रभाव भगवान से भी बढ़कर होता है। अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में, हम तो देखते थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान सबसे बड़े हैं, आज मालूम चला कि भगवान भी किसी को बड़ा बना करके राजी होते हैं, इसलिए भगवान भी बड़े हैं। दूसरे को जो बड़ा बनाता है वही बड़ा होता है। हम देखते थे कि भगवान सबसे बड़े हैं, परंतु भगवान ने आप जैसे संतों को, महात्माओं को बड़ा बनाया, इसीलिए भगवान बड़े हैं। और आप महापुरुष इसलिए बड़े हैं कि आप अपराधी के अपराध को देखते ही नहीं है और बहुत जल्दी आप क्षमा कर देते हैं। हे संतों और हे भगवान, आप दोनों की आपस में क्या क्या सांठ गांठ है, कैसा आप दोनों का हृदय, आप दोनों ही जानो। दुष्करह कौन साधु नाम, दुष्टजो वा महात्म नाम, यही संग्रह हितो भगवान सात्वताम ऋषभ भरी। हम तो ये कहते हैं कि भगवान से बढ़कर भगवान हो, भगवान के भक्त होते जिनके द्वारा लोगों को भगवान का ज्ञान होता है। भगवान के विषय में जान लेना ये जितना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम भगवान के दर्शनों का नहीं है। भगवान के दर्शन इतने बड़े कीमती चीज नहीं है, जितनी बड़ी चीज भगवान के तत्व को जानना और भगवान के तत्व के रहस्य में स्थित होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुक्ति भी बड़ी बात नहीं है राजन। मुक्ति तो भाई एक बार बैठ करके कीर्तन कर लोगे, जीवन में भगवान का नाम ले लोगे, उतने मात्र से हो जाएगी। लेकिन भाई भगवान का जो तत्व है उसको समझना ये बहुत मुश्किल है। ये तत्व समझाते हैं संत महात्मा। राजन, मैं बहुत अनुग्रहित हुआ हूं, इसलिए नहीं कि मेरे को प्राण बच गए, इसलिए कि आज मुझे होश आया है कि उम्र में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कितनी बड़ी है, आज मुझे भक्ति का ज्ञान हुआ है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो पापों को पीठ के पीछे रख करके, दूसरे के अपराधों को पीठ के पीछे रख करके केवल भगवान की तरफ ही लगा रहता है। इसलिए अम्बरीश जी, आज मैंने स्वीकार किया है कि तपस्या बड़ी नहीं है, भगवान का प्रेम ऊंचा है। तपस्या के घमंड में तो मैंने तुमको मारने का संकल्प कर लिया, और भक्ति इतनी बड़ी है कि तुमने मुझे बचाने का विचार कर लिया। तो भाई मारने वाला बड़ा है कि बचाने वाला बड़ा है? तो भाई तपस्या से भगवत प्रेम बहुत ऊंचा है, भगवान का प्रेम सबसे ऊंचा है। अब आप भोजन कीजिए, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, आप भोजन कीजिए, आप भी भोजन कीजिए, हम भी भोजन करें, और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब बात कही गई तो अम्बरीश जी ने कई प्रकार से दुर्वासा जी की स्तुति की, और स्तुति करके फिर उनको भोजन करवाया, और भोजन कराने के बाद में बड़े प्रेम से उनको वहां से विदा किया। कर्मावदात मेतंते, दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि हे अम्बरीश, मैं और आज क्या दे सकता हूं, पहले तो मैंने तुम्हारे लिए कृत्या भेजी, लेकिन अब मैं भगवान के दर्शन करके आया हूं, और भगवान के द्वारा संतों की महिमा सुन करके आया हूं, और संतों की महिमा सुन करके एक संत महिमा सुनने के बाद तुम्हारा मैंने दर्शन किया है, इतनी अवधि में मैंने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसके बल पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी युग युगांतर तक कीर्ति फैलेगी और स्वर्ग के प्राणी भी तुम्हारा नाम ले लेकर के बड़े आनंदित होंगे। इस प्रकार से दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया, तपस्या के बल पर नहीं दिया आशीर्वाद, भगवान का दर्शन, संतों की महिमा सुनी और संतों को देखा, उसके बल पर उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर दुर्वासा को बहुत संतुष्ट कर दिया, दुर्वासा जी वहां से रवाना हो गए। और जब तक दुर्वासा नहीं आए थे तब तक का एक साल का समय बीत गया। बेचारे अम्बरीश जी दुर्वासा की प्रतीक्षा करते रहे, वो एक काती सुदी ग्यारस निकली तो दूसरी जब काती सुदी ग्यारस आई जब तक बेचारे वहां पर बैठे रहे वो, और जब आ गए तो फिर भोजन करा के विदा कर दिया। इतने दिन तक राजा क्या करते थे थी के मुनि तदर्शनाकांक्षो, राजा अब भक्षो बभूव है, राजा ने केवल जल पी करके निर्वाह किया था। गति च दुर्वासे, दुर्वासा ऋषि चले गए। अम्बरीश को मालूम चला कि ऐसे से दुर्वासा कष्ट पाए हैं, तो दुर्वासा ऋषि को जैसे कष्ट पाए और ऋषि की कष्ट से मुक्ति हुई, दोनों में ही केवल भगवान की कृपा को देखा। उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई नहीं देखा कि हमारे भक्ति का प्रभाव ही उनके याद नहीं आया और भगवान के प्रभाव को वो देखे। ऐसे परब्रह्म परमात्मा में उनका बड़ा विलक्षण प्रेम था। और कहते हैं उन्होंने ब्रह्मलोक के पर्यंत जो भोग है उन सारे के सारे भोगों को नरकों के समान समझा, और फिर उन्होंने राज्य का भी त्याग कर दिया, जंगल में गए और वे तो केवल भगवान की भक्ति में ही मस्त रहते थे। इस प्रकार से ये अम्बरीश का चरित्र है। अब इस चरित्र की क्या महिमा के, हम तो यही कहते हैं कि इस चरित्र को जो सुन लेता है, सुनने के बाद उसको भगवान का भक्त होना ही पड़ता है, वो भगवान का भक्त हो ही जाएगा, इसमें संदेह एक बात नहीं है। भक्तो भगवतो भवेत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अम्बरीश के तीन लड़का थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप के पृषदस्व हुए, उसके रथीतर हुए। रथीतर के कोई संतान नहीं थी, ध्यान देना कैसे कैसे ये राजा लोग हुए, उनके कोई संतान नहीं थी। फिर अंगिरा से प्रार्थना की गई, अंगिरा के तपस्या के प्रभाव से उनके संतानें हुई, तो वे सब के सब अंगिरस कहलाए और क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रिय के यहां जन्म लेकर के और वे ब्राह्मण हो गए। ये बड़ी विचित्र बात है, कभी कभी शास्त्रीय मर्यादाओं से कुछ भिन्न बात मिल जाती है। तो यहां भगवान के जो भक्त होते हैं या जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके अंदर कहीं कहीं पर शास्त्र का अतिक्रमण होता हुआ दिखता है, तो उसमें यही समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति सबसे ऊंची है। कहते हैं मनु के इक्ष्वाकु पैदा हुए छींकने के कारण। इक्ष्वाकु बहुत श्रेष्ठ उनके पुत्र थे। इक्ष्वाकु के 100 बेटा थे। 100 बेटा में विकुक्षी, निमि और दंड, ये तीन प्रमुख थे। इनमें से 25 तो पूर्व दिशा में गए और 25 पश्चिम दिशा में गए, और 3 ये थे ही, और बाकी के जो 47 थे वो अन्य दिशाओं में जाकर शासन करते थे। एक बार श्राद्ध की जो विधि है उसका उल्लंघन करने के कारण विकुक्षी को देश निकाला दे दिया, और फिर इक्ष्वाकु के मरने के बाद फिर विकुक्षी था वो विकुक्षी शासक बन गया। विकुक्षी के पुरंजय नाम का लड़का हुआ, उसको पुरंजय भी कहते हैं, इसको इंद्रवाह भी बोलते हैं, इसको ककुत्स भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। कारण हुआ परीक्षित कि विकुक्षी का जो बेटा था बहुत बलवान था। एक बार असुरों ने देवताओं को हरा दिया, देवता लोग इस पुरंजय के पास में आए और कहने लगे कि भी हमारी सहायता करो। इसने कहा कि इंद्र यदि हमारा वाहन बने तो मैं सहायता करूं। इंद्र ने कहा कि अरे मैं त्रिलोकी का सम्राट और ये मेरे ऊपर चढ़ करके फिर युद्ध करेगा, इतना नीचा बनाना चाहता है। मना कर दिया कि मैं इतना नीचा नहीं बनूंगा। तो कहा हम लड़ेंगे ही नहीं। तब फिर सबने समझाया कि महाराज अपना काम निकालने के लिए तो मनुष्य को यदि किसी के सामने झुकना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। तो फिर वे इंद्रवाहन बन गए, इसलिए उसका नाम इंद्रवाह भी बन गया। अब ऐसा युद्ध किया कि असुरों को परास्त कर दिया और देवताओं को राज्य दिला दिया। इस प्रकार से ये पुरंजय हुए, पुरंजय के अनेना बेटा हुए, और फिर उसके विश्वरंदी हुए, उसके चंद्रमा हुए, ये चंद्रमा नहीं नाम है किसी का चंद्र, और उसके युवनाश्व पैदा हुए, युवनाश्व के शाबस्त पैदा हुए जिससे शाबस्ती नगरी बनी है, उसके बृहदश्व हुए, बृहदश्व के कोवलयाश्वक हुए, कुबलयाश्व के बहुत लड़के थे, 21,000 लड़के थे, 21,000 लड़के थे, ये सारे के सारे उत्तंक ऋषि का प्रिय कार्य करने के लिए धुंधु नाम के असुर से जाकर भिड़ गए, लड़ते रहे उससे, लड़ते 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 धुंधु को तो मार दिया, धुंधु को तो मार दिया उन्होंने, इनका नाम धुंधु पार पड़ गया। और इसमें केवल तीन बचे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व, तीन ही बचे। और तीनों ने फिर जो है अपने पिता का आशीर्वाद लिया, ऋषि का आशीर्वाद लिया। दृढ़ाश्व का हरियश हुआ, उसके निकुंभ हुआ, निपुकों के वर्णाश्व हुए, उसके फिर आगे जाकर कृषाश्व हुए, उसके बाद सेनजीत हुए, कहते हैं उसका युवनाश्व नाम का फिर आगे लड़का हुआ। युवनाश्व के कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी तो ऋषि बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए आज इतना बड़ा अच्छा यज्ञ करेंगे, उसके अंदर हम इंद्र को प्रसन्न करके और आपसे पुत्र के लिए वरदान ले लेंगे। ध्यान देना, अब वो युवनाश्व जी गए जंगल में, वहां बहुत बड़ा एक मंडप बनाया, उसमें यज्ञ चालू कर दिया, स्त्रियां भी सब उनके साथ में थी, रानियां, यज्ञ चालू कर दिया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, उनको ये बता दिया कि आपको जल नहीं पीना है, अच्छी बात है, जैसा जैसा नियम है वैसा बताया। रात्रि में बेचारे को प्यास लगी आई राजा को, तो जो वो अभिमंत्रित जल था, वो अभिमंत्रित जल जिस कलशे में पड़ा था, उस कलशे का जल उन्होंने पी लिया। जब वो कलशे का जल पी लिया, सुबह मालूम किया कि ये कलशा खाली क्यों है, ये अभिमंत्रित जल कहाँ गया, कि महाराज मैंने पी लिया वो तो। अरे पूजा की सामग्री को तुम एक वस्तु के रूप में देखते हो, ये जो पूजा की सामग्री, अनुष्ठान की सामग्री है, ये बड़ी दिव्य होती है, इसके अंदर कई प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं, वो तुमको मालूम नहीं, वो ब्राह्मणों को मालूम, तुम लोगों को कम से कम प्यास लगी तो और कोई हमसे बात पूछते, ये जल तुमने कैसे पी लिया, इसे तुम्हारे पेट से छोरा निकलेगा। माने जो बच्चे माताओं के पेट से निकलते हैं, अब वो तुम्हारे पेट से बच्चा निकलेगा, आश्चर्य की बात है ना। अब कहा कि अब क्या होगा कि तुम्हारे पेट से लड़का पैदा होगा। थोड़े दिनों के बाद वो लड़का पैदा हो गया, और वो लड़का पैदा हुआ तो सब विचार करने लगे कि यदि स्त्री के लड़का पैदा हो तो स्त्री तो पालन कर लेगी, अब पुरुष के पेट से लड़का पैदा हो जाए उसका पालन कैसे होगा। तो कहा इसकी कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षा करेगा। तो वहां इंद्र ने बोला कि इसकी रक्षा मैं करूंगा, माम धाता, ये मुझे धारण करने वाला होगा। तो उसका नाम फिर मान धाता ही रह गया। अब मान धाता था वो इंद्र के द्वारा बढ़ गया, और आगे जाकर के वो बहुत बड़ा सम्राट हो गया। ये रावण वगैरह भी इसके सामने हरदम डरा करते थे, इतना ये मान धाता चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इसका विवाह बिंदुमती के साथ हुआ, और इसके तीन बेटा हुए और 50 उनके बेटियां हुई। तो पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद, ये तीन इनके बेटा हुए, ये अम्बरीश अलग है, और 50 उनकी कन्याएं थी। इनका सौभरी के साथ विवाह हुआ, तो सौभरी तो ऋषि थे और ये क्षत्रिय थे, इनका विवाह कैसे हुआ तो बताते हैं। सौभरी ऋषि यमुना नदी के किनारे गए, वहां में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते उन्होंने मछलियों को देखा कि भाई ये तो घर गृहस्थ में रह रही हैं। उनके मन में आया जरा अपने भी गृहस्थी देख लो, देखें गृहस्थी में क्या चीज है। तो अब गृहस्थ में हम भी रहे, ऐसा विचार आया तो अब भाई हमारा विवाह कौन करे। तो गए राजा के पास, मानदाता के पास, मानदाता से कहा देखो भाई तुम्हारे 50 लड़कियां हैं, एक लड़की का हमारे साथ विवाह कर दो। राजा ने देखा कि भाई ये बूढ़ा ऋषि है और इसकी सकल सूरत एकदम बिगड़ी हुई है, जिस किसी भी कन्या को इसके साथ दे देंगे वो कन्या तो उम्र भर मुझे कोसती रहेगी, क्योंकि आपने कहां भेज दिया हमको। और यूं कह रहे हैं कि हे ऋषि हम तो कोई कन्या नहीं देंगे तो ऋषि नाराज, दे देंगे तो वो कन्या नाराज। तो कहा अच्छा ऐसा करो महाराज, आप हमारे महल में चले जाओ और जो भी लड़की आपको पसंद करे आप उसी को ले जाओ, हम तो किसको देवे अब। तो सौभरी ऋषि समझ गए कि राजा तो देना नहीं चाहते हैं, और राजा के मन में यह है कि कोई मुझे पसंद करने वाली है नहीं, ऋषियों का प्रभाव राजा जानता नहीं है, कि अच्छी बात है जो मुझे चाहेगी उसको दे दोगे ना, कि बिल्कुल दे देंगे, जबान पक्की है कि बिल्कुल जबान पक्की है। अब वागदान तो हो गया। अब गए सौभरी ऋषि महल में, महल में गए तो अपने तपस्या के प्रभाव से इतने सुंदर बने वो, इतना दिव्य उनका शरीर बना, सुंदर शरीर बना, कि वो 50 कन्याएं कहने लगेंगी इनके साथ तो मैं विवाह करूंगी। उसने कहा मैं विवाह करूंगी, वो 50 के 50 उनके पीछे आ गए। राजा ने कहा अच्छा महाराज ये 50 कन्याएं आपको चाहती है, मैं अपने जबान के अनुसार आपके साथ इनका विवाह कर देता हूं। तो पचासों के साथ ही विवाह कर दिया, पचासों के साथ विवाह कर दिया। वो टोड़ा लेकर के आ गए जंगल में, और लेकर के वहां उन्होंने अपनी सिद्धि के प्रभाव से उन पचासों के लिए 50 महल बना दिए, एक एक लिए एक एक अलग अलग बना दिया। गृहे सुनानोपवना मलाम्भस सरस सुसौगंधिक काननेशु, और प्रत्येक के घर के अंदर अच्छे अच्छे बगीचे बना दिए, और बहुमूल्य वहां पर पलंग बना दिए, वस्त्र आभूषण सबको दे दिए। ऐसा दिखने लगा कि जैसे कोई ऋषि का ये गृहस्थ नहीं है, ये तो किसी बड़े भारी सम्राट का ठाट बाट है, ऋषि ने सब पैदा कर दिए। इन 50 बेटियों से मिलने के लिए मानदाता एक बार वहां आए तो वो चक्कर खा के रह गए, अरे मेरा भी ऐसा महल नहीं है जैसा महल एक एक का है। वह भी बेचारा लज्जित हो गया। इधर सौवरी ऋषि इनके साथ में रहे कई दिन तक साथ में रहे, उनके बहुत लड़के पैदा हो गए। ऐसे करते करते उनके 5000 बच्चे हो गए सौवरी ऋषि के। सौवरी ऋषि के 5000 बच्चे, वे मन में विचार किया, हम तो ऋषि थे, भगवान की आराधना करते थे, अरे हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़े तब तो है अच्छा जीवन, और दूसरे के गलत प्रभाव से हम प्रभावित हो जाएं तो क्या हमारा जीवन हुआ। पशु पक्षी घर गृहस्थ में रह रहे थे, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ जाए और फिर हम घर गृहस्थ में फंस जाएं, अरे राम राम राम, ये तो बड़ी भारी मूर्खता की बात है। कभी भी मनुष्य को कभी भी किन्हीं संगी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जो घर गृहस्थ में कुटुंब में आ सकते हैं उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, वो तो यही कहेंगे कि ये घर अच्छा है, रुपया अच्छा है, स्त्री अच्छी है, पुत्र अच्छा है, यही बात सुनाएंगे, इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को संग किए बिना न रहा जाए कि हम तो किसी न किसी के साथ संग करेंगे ही, तो कोई बात नहीं है, संतों के साथ संग कर लो, तुम्हारा संग है शुद्ध हो जाएगा। मैं एक अकेला था, 50 के साथ संग किया तो 5000 सर्ग है, 5000 हमारे पैदा हो गए। अब 5000 के साथ मोह करो, अब 5000 का विवाह करो तो 10000 वो हो जाएंगे उनके साथ मोह करो, और फिर एक एक के हजारों हो तो लाखों के साथ मोह करो। अरे ये तो संसार में एक जगह संग कर लोगे तो फिर कीचड़ में उतरने के समान, यहां तो मोह करते चले जाओ, पार ही नहीं पड़ेगा यहां तो। कहा हे भगवान, अब मेरे से गलती हुई, आइंदे तो गलती करूंगा नहीं। अब उन सबको छोड़ करके भाई देखो आपके बेटा बेटी हो गए, अब हम भजन करेंगे। सबको छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, और फिर जाकर के ऐसी ऊंची उन्होंने स्थिति प्राप्त की कि फिर संसार में कहीं उनकी आसक्ति नहीं रही। उस मानदाता के अम्बरीश पुत्र हुए, उस अम्बरीश से फिर यवनाश्व हुए, उससे हरित हुए, उससे और भी उनके लड़के पैदा हुए। कहते हैं इस वंश में 63 हुए, और पुरुकोत्स और पुरुकुत्स का लड़का 63 हुआ, और उसके वंश में आगे जाकर हरियश्व हुए, उसके अरुण हुए, उसके त्रिबंधन हुए, उसके सत्यव्रत हुए, और उसके त्रिशंकु हुए। कहते हैं सत्यव्रत ही त्रिशंकु के नाम से विख्यात था। ये त्रिशंकु था कि जो शरीर सहित विश्वामित्र जी के द्वारा ऊपर स्वर्ग में जाने लगा तो उसको नीचे खिसका दिया, स्वर्ग वाले ने तो आने नहीं दिया और पृथ्वी पर इसको गिरने नहीं दिया, बीच में त्रिशंकु की तरह से लटकता रहा। कहते हैं कि इसी त्रिशंकु का हरिश्चंद्र लड़का हुआ। इस त्रिशंकु हरिश्चंद्र के कोई लड़का नहीं था। अब ध्यान से सुनना हो, कई कई लोग कई कई प्रकार की मनोतियां मना लेते हैं। हरिश्चंद्र था, कहते हैं उसके कोई लड़का नहीं। तो एक बार नारद जी मिले कि महाराज कोई लड़का नहीं है, क्या करूं? कि भाई आप वरुण देवता की उपासना करो, वरुण देवता का यज्ञ करो। तो वरुण देवता की उपासना की, उनके लिए यज्ञ किया, तो वरुण देवता सामने आ गए कि बोलो भाई क्या चाहते हो? कि महाराज हमारे एक बेटा हो जाए, तो आपको बेटा हमारे हो जाएगा, हम आपको ही चढ़ा देंगे वो बेटा। क्या अच्छी बात, जाओ तुम्हारे बेटा हो जाएगा। तो बेटा हो गया। अब बेटा हुआ तो वरुण देवता आए कि लो भाई तुम्हारे बेटा हो गया, हमको दे दो। कि महाराज अभी इसके दांत नहीं आए, थोड़े दांत आ जाए फिर दे देंगे। अच्छी बात। थोड़े दिनों के बाद दांत आ गए कि महाराज अभी तो दांत आए, उछलता है कूदता अच्छा लगता है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा दे देंगे। क्या अच्छी बात है। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या महाराज अभी तो इसका विवाह नहीं हुआ। क्या अच्छी बात है। विवाह हो गया तो क्या महाराज अभी तो इसके लड़का नहीं हुआ। तो ये बात जब उसने सुनी लड़के ने कि मेरे पिताजी तो मुझे वरुण देवता को दे रहे हैं, तो वो चुपचाप जंगल से निकल गए, घर से निकल गया और जंगल में चला गया। जंगल में चला गया, पीछे से वरुण देवता ने वरुण देवता ने हरिश्चंद्र के पेट में बीमारी कर दी। ये जलोदर की बीमारी वरुण देवता के नाराज होने से होती है, तो वो जलोदर की बीमारी होगी, पेट में पानी पानी हो गया, खावे पिए उसका सब पानी पानी बन जाए और वो पेट फूलता गया। उस रोहित को मालूम चला, हरिश्चंद्र के लड़के को मालूम चला कि मेरे कारण से पिताजी कष्ट में है, तो वो वहां से रवाना होकर अपने घर की तरफ आने लगा, तो बीच में इंद्र मिल गया। अरे क्यों मरने के लिए जाता है? देखो ये देवताओं में भी आपस में अनबन रहती है, भीतर की प्रकट में तो एक दिखते हैं, भीतर में अनबन रहती है, क्योंकि इंद्र को मालूम है कि तो वरुण देवता से हुआ है और वरुण देवता की कृपा से हुआ है, तो इसका परिवार वरुण को ही मानेगा, हमको तो मानेगा नहीं। तब कहा कि अरे तुम क्या करोगे जाकर के पिताजी, पिताजी तो अब क्या, पिताजी के तो जलोदर हो गया और तुमको वरुण ले जाएगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी, पिता की भी नहीं रहेगी। तो रोहित वापिस चला गया, एक बार गया, दो बार गया, चार बार गया, तो फिर आगे जाकर वो रोहित विचार किया कि अब कुछ भी हो मुझे जाना ही है। इतना में सुनसेप नाम का एक ब्राह्मण बालक उसको वो खरीद लाया और ला करके वो गया पिताजी के पास और पिताजी से कहा महाराज अब कोई वरुण देवता के लिए यज्ञ कर लो। पिताजी ने कहा अच्छी बात है। अब वहां पर यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में विश्वामित्र जी भी आए, तो कहते हैं विश्वामित्र जी होता हो गए और उसमें जमदग्नि वो ब्रह्मा हो गए, जमदग्नि उसमें अधर्यु हो गए, वशिष्ठ जी उसमें ब्रह्मा हो गए और अयास्य थे वो सामवेद को पढ़ने वाले हो गए। इस प्रकार से वो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ में फिर देवताओं को सबको प्रसन्न किया गया, फिर इंद्र को भी प्रसन्न किया गया और वो सुनसेप था वो वरुण देवता को अर्पित किया, वरुण देवता ने वो वापिस विश्वामित्र जी को दे दिया। इस प्रकार से हरिश्चंद्र जी ने अपनी कामना की थी कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे। तो भाई रोहित था, फिर उसने वो अंत में अनुष्ठान किया था और विश्वामित्र जी थे जिन्होंने सुनसेप को बचा भी लिया था। कहते हैं रोहित का बेटा हरित हुआ, हरित के चंप हुए, चंप से जिसने चंपापुरी बनाई और उसी वंश में आगे जाकर के बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक नाम के राजा एक बार शत्रुओं से हार गए, उनका राज्य वगैरह सब छीन लिया, तो फिर उनको जंगल में रहना पड़ा, चले गए हिमालय के, वहां अपनी स्त्रियों के सहित जंगल में हिमालय की तलैटी में रहते थे। वहां पर उस बाहुक का देहांत हो गया, बाहुक के देहांत होने पर उनकी स्त्री थी वो सती होने लगी, तो औरव नाम के जो ऋषि थे उन्होंने मना किया तुम सती मत हो क्योंकि तुम्हारे पेट में बालक है, प्रजावंतम और तुम्हारे पेट में बालक है, तुमको सती नहीं होना है। क्या अच्छी बात है। अब दूसरी जो स्त्रियां थी वो स्त्रियां उनके मन में ये विचार आया कि भाई देखो यदि इसके बालक हो जाएगा तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको क्या किया कि चुपचाप जहर दे दिया, गर नाम होता है जहर का, जहर दे दिया। तो इधर ऋषि को मालूम चला कि बेचारे राजा का वंश नष्ट हो जाएगा, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़े कि उस जहर ने उस बालक को, गर्भस्थ बालक को नहीं मारा और मां को भी नहीं मरने दिया। समय पर वो बालक पैदा हुआ, वो जहर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम सगर रख दिया। क्या बताऊं, सगर इतना चक्रवर्ती सम्राट हुआ, उसके बेटों ने सागर बनाया इसलिए इसका नाम सागर है। उन्होंने ताल जंगों को, यवनों को, शकों को, हययों को, इनको गुरुजी के वाक्य से मारा नहीं लेकिन मुंडित करके, विकृत करके इनके पराक्रम को इन्होंने छीन लिया था, ऐसे सागर प्रतापी सम्राट थे। कहते हैं एक बार वे बहुत बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र डरता है कोई मेरा आसन न ले ले वे। उस समय में इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया, घोड़ा चुरा करके और कहीं ले जाकर के रख दिया। इधर सगर के दो स्त्रियां थी, एक तो सुमति नाम की स्त्री, एक केशनी नाम की स्त्री। अब कहते हैं कि सुमति के लड़के थे बहुत विलक्षण, वो लड़के थे 60,000 लड़के थे, वे सब के सब खोजने के लिए निकले तो पृथ्वी को इधर देखा उधर देखा, खोद खोद के देखा, देखते देखते वे 60,000 थे वो पताल में गए। वहां पर कपिल भगवान आराधना कर रहे थे भगवान की या अपने स्वरूप में स्थित थे और उन्हीं के पास में उसने घोड़ा छोड़ दिया। अब वो 60,000 एक साथ हल्ला करने लगे, देखो देखो ये ऋषि का वेश बना के कौन बैठा है यहाँ, इसी ने ही हमारा घोड़ा चुराया है, यही महान अपराधी है, लाओ शस्त्र लाओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसा वो चिल्लाने लगे। तो ऋषि की समाधि टूटी, उन्होंने आंख से देखा, देखते ही वो सब के सब भस्म हो गए। परीक्षित ये कपिल के क्रोध से भस्म नहीं हुए, कपिल तो क्रोध को दूर करने के लिए अवतार लिए थे, उनके अंदर क्रोध नहीं आया, एक महात्मा के अंदर दोषारोपण किया, इस पाप से वो जल करके भस्म हो गए। अब वो भस्म हो गए। इधर केशनी का लड़का था अंशुमान, वो तो बड़ा विचित्र था। वो ऐसी ऐसी क्रिया करता था कि पिताजी ने तो उसको देश निकाला दे दिया था। उसका नाम था अंशुमान। अंशुमान के एक लड़का था असमंजस, कहते हैं कि असमंजस था वो बड़ा। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम पितामह हिते रहते है। हाँ, तो केशनी का लड़का था अंशुमान और असमंजस, और असमंजस का लड़का था अंशुमान। अब वो अंशुमान को मालूम चला कि इस प्रकार से हमारे चाचा लोग सब भस्म हो गए हैं। तब फिर वो घोड़ा को लेकर के, घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। सब जगह घूमते घामते कपिल भगवान के पास में पहुंचा। जो ही कपिल भगवान के दर्शन किए, कपिल भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप तो संसार में सबसे परे हैं, समाधि के द्वारा भी आपका ज्ञान नहीं हो सकता है। जितने देहधारी हैं सब त्रिगुण के अंदर फंसे हुए हैं, आपकी माया के द्वारा मोहित हुए हुए हैं। वे बाहर ही बाहर देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध बाहर ही बाहर देखते हैं और अपने अंदर छिपा हुआ स्वरूप है उसको बिल्कुल भूले बैठे हैं। आप सुनंद नंद आदि पार्षदों से युक्त रहते हैं, ज्ञान का उपदेश देने के लिए आपने अवतार लिया है, हम आपकी शरण स्वीकार करते हैं। महाराज आपके दर्शन से हमारा मोह दूर होता है, इस प्रकार से वो बोले। तो कपिल भगवान ने आंख खोल करके कहा, बेटा ये तुम घोड़ा ले जाओ और तुम्हारे जो ये चाचा लोग हैं यहां पर जल करके भस्म हो गए हैं, इनका उद्धार गंगा जी के जल से हो सकता है। आप गंगा जी का जल तुम ले आओ तो इनका उद्धार हो जाए। क्या अच्छी बात है। अब वे वहां से रवाना हुए घोड़ा लेकर। यज्ञ को तो पूरा कर दिया। सगर ने अपना राज्य था वो अपने पौत्र को दे दिया और जाकर के भगवान का भजन करने लगा। और फिर उसके बाद अंशुमान आए। अंशुमान ने फिर तपस्या की गंगा जी की प्राप्ति के लिए। देखो हमको तो गंगा जी सीधी साधी मिलती है, वो गंगा जी बहुत कठिनता से आई है, इसका बहुत आदर करना चाहिए। कहते हैं फिर गंगा जी के लिए अंशुमान ने प्रयत्न किया, गंगा जी आई नहीं। फिर दिलीप ने प्रयत्न किया, फिर भी नहीं आई। फिर दिलीप के बेटे भगीरथ ने प्रयत्न किया। तो ये पीढ़ियों से चला आ रहा जो प्रयत्न था, उस प्रयत्न से फिर गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो गई और भगीरथ से कहने लगे कि बेटा भगीरथ मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे वेग को इस संसार में धारण कौन करेगा। उसकी भी चलो कोई चिंता नहीं, सबसे बड़ी चिंता है मैं इतनी पवित्र हूं, इतनी पवित्र हूं कि मेरे अंदर कोई भी स्नान कर लेगा तो वो पाप रहित हो जाएगा। अब महान पापी आदमी यदि मेरे यहां स्नान करेंगे उनका सारा का सारा पाप मेरे अंदर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं तो महान अपवित्र हो जाऊंगी, कोई उपाय सोचो। भागीरथ ने कहा, देखो गंगा जी आपको कौन धारण करेगा ये विषय थोड़ा दूसरा है। आप ये समझते हो कि हमारे यहां पापी पापी रहते हैं पृथ्वी में और उन पापियों के स्नान से आप पापमय हो जाएंगी, ये तो आपको भय मिटाई देना चाहिए। हमारी पृथ्वी में ज्यादा न सही, लाखों में करोड़ों में अरबों में खरबों में नील में पद्म में कोई एक तो महापुरुष होगा ना, वो एक महापुरुष भी यदि आपके अंदर स्नान कर लेगा तो आपका तो पाप वहां रहेगा नहीं। और रही वेग धारण करने की बात, तो सो मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने शंकर का ध्यान किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा कि अरे भाई गंगा जी को तुम ला रहे हो, ओहो भगवान का चरणोदक तुम लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, ओहो हम तो बहुत लोगों को नाम सुनाते हैं, बनारस के अंदर बैठे हुए हमने नाम का एक बाजार खोल दिया, आओ ले जाओ नाम, हम तो जहां मरते हैं उनको हम नाम सुना सुना के तारते हैं। चलो हम तो एक जगह बनारस में ही बैठे हैं, काशी में ही बैठे हैं, हम तो चाहते हैं सब भगवान को प्राप्त हो जाए। ले आओ गंगा जी को ले आओ कि महाराज ऊपर से आएगी कौन धारण करेगा, देखा जाएगा, तुम ले तो आओ। कहने महाराज हम थोड़ा निश्चिंत हो जाए, लाओ लाओ हमारे सिर के ऊपर लाओ, भगवान का चरणोदक और कहां रहेगा, हमारे सिर पर ही तो रहेगा, आने दो गंगा जी को। आप गंगा जी को जो है प्रार्थना की, गंगा जी से प्रार्थना की भगीरथ ने। गंगा जी बड़े वेग से ऊपर आई, शंकर भगवान के यहां पहले पहले मस्तक पर आई। शंकर भगवान ने अपनी जटा के अंदर गंगा जी को उलझा दिया कि सारी जटाएं धोलो नालो, ये गंगा जी तो हमारे लिए दुर्लभ है, बेचारे और लोगों के लिए तो दुर्लभ है ही। शंकर भगवान ने जटाओं में रख दिया और एक थोड़ा सा रास्ता रखा, कह लो भाई अब गंगा जी आप यहां से पधारो। तो वो शंकर भगवान की जटाओं में से होकर के गंगा जी चलने लगी। आगे आगे भगीरथ का रथ चल रहा है, पीछे पीछे गंगा जी चल रही है। ऐसे चलते 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 जहां पर वो राख पड़ी थी उस राख को वो गंगा जी बहा ले गई और इस प्रकार से उन सब का कल्याण हो गया। एक इस भगीरथ के प्रयत्न से, इस उसके पूर्वजों के प्रयत्न के कारण सारा संसार गंगा जी से आज पवित्र हो गया है। उसी भगीरथ से फिर आगे वंश चला है, श्रुत उससे पैदा हुआ, उससे नाभ पैदा हुए, उससे सिंधु द्वीप पैदा हुए, उससे अयुत पैदा हुए और अयुत से ऋतुपर्ण पैदा हुए जो नल के मित्र थे और जिन्होंने अष्ट संचरण की विद्या सिखाई थी। कहते हैं उसी ऋतुपर्ण के सुदास बेटा हुए, सुदास के सौदास पैदा हुए और सौदास तो भाई क्या बतावे, ऐसे विचित्र थे कि वशिष्ठ जी को भी इन्होंने श्राप दे दिया था, इस कारण से भी राक्षस हो गए थे और फिर इनके कोई लड़का नहीं हुआ था और वे बड़े कष्ट में पड़ गए कि महाराज जी क्या बात हुई, गुरु जी को भी श्राप दे दिया, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। कि एक बार सौदास शिकार खेलने के लिए गए, तो वहां पर एक राक्षस को मार दिया। अब राक्षस को मार दिया तो दूसरा जो उसका भाई था, राक्षस का भाई, उसने देखा कि मेरे भाई को मारने वाले इस राजा का बदला लेना है, तो वो राक्षस का भाई उसके रसोइये का रूप बना करके उसके रसोई में आया और भोजन बनाने लगा। संयोग की बात थी कि उस दिन वशिष्ठ जी को भोजन का निमंत्रण दिया, सौदास को पता ही नहीं कि मेरे रसोई में कोई आज राक्षस आकर भोजन बना रहा है। उसने देखा रोज जो आके रोज भोजन बनाता है वही बना रहा है। वशिष्ठ जी महाराज को भोजन का निमंत्रण दिया, वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हो गए और जो ही वहां पर बैठे तो उनको मनुष्य के मांस की दुर्गंध आई। इतना क्रोध आया वशिष्ठ जी को कि अरे राजन तुम यहां मनुष्य का मांस खिलाने के लिए हमको बुलाए हो, इतना क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओगे, मनुष्य का मांस तो राक्षस खाते हैं, जाओ तुम राक्षस हो जाओगे। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, राजा ने मालूम किया बात क्या है, कहा महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं थोड़ी मांस खाता हूं, मैंने थोड़ी कोई मांस खिलाने के लिए आपको बुलाया था, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने जब गुरुजी ने श्राप दे दिया तो अपने हाथ में जल लेकर के वो भी श्राप देने लगा अपने गुरुजी को, तो उसकी स्त्री ने आकर मना किया कि देखो बड़े आदमी दंड दे सकते हैं, बड़े आदमी की बराबरी नहीं करते हैं, माता पिता यदि बिना कारण से भी डांटे, गुरुजन बिना कारण से भी डांटे तो वो सहन करना आपका काम है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा जल कहां छोड़ूं, ये जल तो आप जहां छोड़ोगे भाई वहीं पर वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा, तो और कहीं नहीं अपने पैरों पर ही डाल दिया वो जल, इसलिए उसके पैर काले पड़ गए। और फिर अपने गुरुजी से कहा महाराज मैं हूं निर्दोष, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। फिर वशिष्ठ जी ने भी ध्यान लगाया कि देखा बेचारे राजा का दोष नहीं है, तो कहा अच्छा ऐसा करो एक बार श्राप तो मेरे मुंह से निकल गया है वो तो होगा ही, लेकिन इसकी अवधि बांध देता हूं 12 वर्ष तक तुम राक्षस रहोगे। क्या अच्छी बात है, अब वो तत्काल राक्षस हो गया। मदयंती उनकी स्त्री थी, उनकी सेवा में रहती थी। अब कहते हैं कि एक बार वो राक्षस बना हुआ चला गया जंगल में, तो वहां पर एक ब्राह्मण, ब्राह्मणी का परिवार था, ये दो जने ही रह रहे थे, उसमें उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और वो उनको मारने लगा। बिचारी ब्राह्मणी बहुत चिल्लाई कि देखो आप राक्षस नहीं हो, आप पहले राजा हो, आपने बहुत ब्राह्मणों की रक्षा की है और आपने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया है, ये पाप मत कीजिए। लेकिन वो कहां माने, राक्षस बुद्धि आ गई उनमें। उसने कहा देखो हमारे कोई लड़का भी नहीं, संतान भी नहीं, हमारी क्या दशा होगी, विचार तो करो। कुछ भी नहीं सोचा और उसने उस ब्राह्मण को मार दिया और खा लिया। न जीविष्ये बिना ये न क्षणांचय मृतकम यथा, बहुत कुछ किया लेकिन वो नहीं माना। तब उसने श्राप दे दिया कि जाओ जब तुम राजा हो जाओगे तो तुम भी अपनी स्त्री के पास में जाओगे तो तुम उसी समय मर जाओगे, श्राप दे दिया। अब 12 वर्ष की अवधि बीत गई, मदयंती को इस श्राप का ज्ञान था तो मदयंती ने उनको सावधान कर दिया कि आपके लड़का नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रकार से आपको श्राप मिला हुआ है। तो कोई वंश नहीं चला तो फिर वशिष्ठ जी को सुनाया गया कि हमारे साथ तो ये बात बीती हुई है, हमको तो श्राप मिला हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, श्राप मिला हुआ है तो इस श्राप का अवरोध हम कर देते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी ने श्राप को किसी प्रकार से रोक लिया और फिर उनके अश्मक पैदा हुए। तो कहते हैं फिर उनके अश्मक पैदा हुए, अश्मक के मूलक पैदा हुए। परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का संहार कर दिया, ये मूलक ही एक ऐसे थे जो स्त्रियों ने इनको बचा के रख रखा था, ये मूलक इसलिए रहे क्षत्रिय यहां से फिर नए ढंग से पैदा हुए, उनके मूल में यही थे, इनका नाम मूलक रखा गया। कहते हैं मूलक के दशरथ हुए, दशरथ के ऐडविड हुए, ऐडविड के विश्व सह हुए और विश्व सह के खटवांग हुए। देवासुर संग्राम में एक बार ये खटवांग देवताओं के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तो उस समय में युद्ध करते करते उन्होंने पहली बात बता दी देवताओं से कि देखो भाई हमारे मरने का समय आवे तो हमको बता देना कि अब इतना समय तुम्हारी जिंदगी का बाकी है, ध्यान देवे। तो सब ने कहा अच्छा महाराज अब आपका एक मुहूर्त बाकी है, एक मुहूर्त बाकी है। तत्काल उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और सबसे अपना मन हटा लिया, सबसे मन हटा करके अपने स्वरूप में वे स्थित हो गए, क्योंकि अपना जो स्वरूप है वो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। तो हित्वा अन्य भावम अज्ञानम तथा स्वम भावम आश्रित है, अपने भाव में वो स्थित हो गया। वास्तव में राजन ये ब्रह्म है वो शून्य नहीं है, लेकिन शून्य की तरह दिखता है। शून्य की तरह दिखना माने जिन इंद्रियों से हम संसार को देखते थे वो ब्रह्म है वो ऐसे नहीं दिखता है। ऐसे न कान का विषय है, न वाणी का विषय है, न बुद्धि का विषय है, इसलिए वो शून्य की तरह प्रतीत होता है। परंतु उसमें स्थित होते हैं तो उसमें शून्यता नहीं रहती है, उसमें बड़ी ताजगी रहती है। ऐसे अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान वासुदेव स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होकर उसने अपनी मुक्ति कर ली। उसी खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रथ रघु हुए और रघु के अज हुए और अज के दशरथ हुए। ये वही दशरथ हैं परीक्षित जिनके यहाँ साक्षात भगवान अपने चार स्वरूपों से राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिए थे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप थोड़ी देर तुम रामचरित्र सुन लो भाई। श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीता पतेर्मुहु। परीक्षित जिसने जरा सा भी भगवान के संबंध में कुछ भी सुना है उन सुनने वालों में शायद ही कोई होगा जिसने रामचरित्र नहीं सुना हो। इतना व्यापक है रामचरित्र, सब उसको सुने हुए रहते हैं। तुमने भी सुना है तो हमने भी सुना है, तुमने भी उसको भूरी श्रुतम तुमने उसको खूब सुना है तो हमने भी उसका खूब रामचरित्र का सुनाते सुनाते वर्णन किया और खूब आनंद लिया है। फिर भी हम तुमको सुनाते हैं, देखो राम जी का कैसा विचित्र चरित्र है। माता पिता की आज्ञा हो गई, राज्य छोड़ दिया, जंगल के अंदर सीता के साथ में घूम रहे हैं, साथ में उनके लक्ष्मण जी हैं। उनको और कोई मित्र नहीं मिले, बानरी मित्र मिले, बानरों को साथ में लिए हैं। शूर्पणखा को उन्होंने कुरूप बना दिया और उनकी स्त्री का अपहरण हो गया और फिर उन्होंने समुद्र के ऊपर निग्रह करके रावण आदि का वध कर दिया। ऐसे कौशलेंद्र भगवान हमारी जगह जगह रक्षा करते रहे। जब उनका जन्म हुआ तो उसके बाद विश्वामित्र जी थोड़े दिनों के बाद दशरथ जी के यहाँ आए, राम और लक्ष्मण को लेकर के गए, मारी चादी से अपने यज्ञ से पिंड छुड़वाया। उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के यहाँ सीता जी के स्वयंवर में गए और वहाँ उन्होंने उस धनुष को बालगज ली ले, जैसे छोटा हाथी का बच्चा ईख के डंडे को तोड़ देता है ऐसे उस धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। धनुष के तोड़ देने से सीता जी के साथ विवाह हो गया। सीता के साथ विवाह हुआ तो रस्ते में परशुराम जी मिले, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार हो क्योंकि भागवत की रचना तुलसीदास जी महाराज से पहले हो चुकी थी। भागवत की कई प्रकार की शैली तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दी है वो बता देंगे। तो भागवत की रचना पहले हुई है, तुलसीदास जी महाराज की रचना बाद में हुई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना इससे भी पहले हो चुकी है, भागवत से भी पहले हो चुकी है, इसलिए यहाँ जो कथा है वो कुछ वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। तो रास्ते में उनको परशुराम जी मिले, उनका घमंड भी उन्होंने दूर कर दिया था। उसके बाद वे अपने महलों में आ गए। एक बार कैकेयी के और दशरथ के संवाद के अंतर्गत कैकेयी ने अपने वरदान के अनुरूप राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो वे सीता जी को साथ में लेकर अंतःपुर को छोड़ दिए। सब प्रकार से आसक्ति का त्याग करके वे जंगलों में रहे। वहां खर और दूषण के साथ उनका युद्ध हुआ। 14,000 सैनिकों का वध करने के पश्चात जब रावण ने शूर्पणखा से सीता की सुंदरता सुनी तो सीता की प्राप्ति के लिए उसका मन ललचाया। वो मारीच को साथ में लेकर के सीता का हरण कर लिए। सीता जी के हरण कर जाने के बाद राम जी महाराज जंगल में दर दर भटकते रहे। व्यास जी महाराज कहते हैं दुनिया को बहुत बड़ी भारी शिक्षा दी है कि देखो मैं त्रिलोकीनाथ हूं, लेकिन मैंने एक स्त्री में आसक्ति रखी तो मैं दर दर ठोकर खाते फिर रहा हूं, रो रहा हूं। आप लोग कोई स्त्रियों का संग मत करना, इस प्रकार से आपको ठोकर खाते खाते फिरता पढ़ाई पड़ेगा। स्त्री संग नाम गतिमिति प्रथयन चचार है। फिर उसके बाद सीता जी की खोज के लिए वे निकले तो कबंद बीच में मिल गए, फिर बांदरों के साथ मित्रता कर ली, बांदरों को लेकर के वे समुद्र के वहां आए। अब समुद्र को वो पार करने की सोच रहे थे, कोई उपाय नहीं मिला तो समुद्र के ऊपर वो कुपित हो गए और समुद्र के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। इतने में ही समुद्र आकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि नत्वाम वयम जड़ धियो न विदाम भूमान, हे महाराज हम तो जड़ हैं, जड़ों को मूर्खों को आप मारिए मत, मूर्खों को आप समझाइए शिक्षा दीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मारेंगे हमको तो हम तो मर जाएंगे, कितने जीव जंतु निरपराध जीव जंतु मर जाएंगे और आपके काम में भी विलंब होगा। आप यहाँ पर एक ऐसा पुल बना दीजिए महाराज, उस पुल के द्वारा आपकी सारी सेना भी तर जाएगी और इस कथा को जो सुनेगा वो भी तर जाएगा, इसलिए आप बड़ा सुंदर पुल बना दीजिए। बद्भो दधौ रघुपति विदाद्रिकूटय, भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, पर्वतों के शिखर लाला करके वहां उन्होंने पुल बना दिया, सेना पार हो गई। सुग्रीव नील हनुमान आदि प्रमुख प्रमुख बांदरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी और विभीषण जी भी राम जी की सेना के अंदर थे। निकुंभ कुंभ आदि का सबका बल था वो वहां पर नष्ट हो गया और अंत में जब सामने रावण आया, राम के सामने वो तरह तरह की बातें करने लगा, तब राम जी महाराज ने अपने धनुष के बाणों से उसकी छाती बीन दी और वह भी खून उगलता हुआ इस धरा के ऊपर पृथ्वी के ऊपर सदा के लिए सो गया। अब लंका में से स्त्रियां आई, रोने लगी, बिलाप करने लगी और मंदोदरी कहने लगे कि हमने आपको बहुत मना किया था कि आपको ये युद्ध नहीं करना चाहिए, आप माने नहीं, इसी कारण से आज आपका ये शरीर है ये रणांगण में पड़ा हुआ है कि जो आपका महल में रहना चाहिए था शरीर वह धूलि दूषित हुआ पड़ा है। इस प्रकार से स्त्रियां बिलाप करने लगी। राम जी का अनुमोदन प्राप्त करके विभीषण जी ने फिर अंतिम संस्कार करवाया और फिर सीता जी का और राम जी का मिलना हुआ। फिर एक विमान में बैठ करके विभीषण सुग्रीव आदि सबके साथ में भगवान वहां से अयोध्या के लिए रवाना हुए। उनके मन में भरत से मिलने की बड़ी छटपटाहट थी। भरत ऐसे थे क्या बतावें परीक्षित, वह तो गोमूत्र के अंदर जो को पका पका करके और अपना निर्वाह करते थे और पृथ्वी के नीचे खड्डे में रहते थे, इसलिए कि पृथ्वी पर तो हमारे स्वामी रह ही रहे हैं, नीचे खड्डे में रहो, स्वामी से नीचे रहने का काम दास का है, इसलिए वो खड्डों में गुफा बना के उसमें रहते थे और वे नंदीग्राम के अंदर रहे। जब उनको मालूम चला कि भगवान यहाँ पधार गए, 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, तो सब जगह उसने घोषणा करवा दी, सारी अयोध्या सजा दी गई, सब जगह धुंधुभियां बज रही है, पताकाओं से सारा अयोध्या नगर सजा दिया गया है। और जो ही वो विमान आया, विमान से राम जी महाराज उतरे तो उनके चरणों में जाकर गिर गया और उनके जो खड़ाऊ थी जिनके आधार पर वो शासन करता था वो खड़ाऊ ला करके भरत जी ने उनके चरणों में रख दिया। उस खड़ाऊ को राम जी ने स्वीकार किया। विभीषण और सुग्रीव राम जी के छत्र को लिए हुए हैं, चवरों को लिए हुए हैं और फिर नंदीग्राम से एक बहुत बड़े समारोह के साथ, एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा के साथ भगवान अयोध्या पहुंचे हैं। और अयोध्या पहुंचने के बाद सब भाइयों का उन्होंने प्रेम लिया, जनता का प्रेम लिया, सब स्त्रियों ने उनका आदर किया, गुरुजनों ने भी आदर किया, सबके चरणों में गिरे, गुरुजनों के चरणों में गिरे। फिर राम जी ने जटा, अपने भाइयों की जो बढ़ी हुई जटाएं थी उन जटाओं को साफ करवाया और स्वयं भी अभिषिक्त हुए और फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से वे राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के राज सिंहासन पर विराजमान होते ही देवताओं में सब जगह हर्ष फैल गया, सबने धुंधबियां बजाई, फूलों की वर्षा की। इस प्रकार से राम जी महाराज के राज्य में कहीं किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं था, कोई आधी व्याधि किसी के कोई कष्ट की बात नहीं थी। वे एक पत्नी व्रत थे, ऐसा बड़ा विलक्षण उनका चरित्र है परीक्षित, ऐसे राम जी जैसा चरित्र तो राम जी के साथ ही रहा है। कहते हैं एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर अपने पृथ्वी के चारों दिशाओं को ब्राह्मणों को उन्होंने दान में दे दी। ब्राह्मणों ने कहा महाराज क्षत्रिय का काम कोई वस्तु देने का है और कुछ देने का है, शासन है वो क्षत्रिय ब्राह्मणों को न देवे, यही ठीक है। ब्राह्मण केवल अपना पूजा पाठ कर्म कांड करवा करके जनता को सुखी रखे, यही काम ब्राह्मण से हो सकते हैं। ये ब्राह्मण पृथ्वी का पालन करे शासन के द्वारा, ये ब्राह्मण के स्वभाव में नहीं है, क्योंकि शासक वही होता है जिसमें थोड़ी कठोरता होती है। या आप ब्राह्मण्य देव है महाराज, आप ये पृथ्वी तो आप ही रखिए, हमें तो आपकी कृपा चाहिए। इस प्रकार से भगवान बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे। एक बार की बात है कि भगवान ने देखा कि यहां प्रजा में हमारे विषय में क्या क्या बातें होती है और प्रजा का क्या हालचाल है। ऐसा विचार करके वे रात्रि में किसी को कुछ बताए नहीं और अपने नगरी के अंदर घूमने के लिए निकले। वहां पर देखा कि एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। वो पति बोल रहा है स्त्री से कि ओ बहुत देर होगी तुमको बाहर गए हुए और बहुत देर बाद तुम आई हो। मैं कोई राम नहीं हूं कि जो स्त्री के लोभ में दूसरे के घर में गई हुई को मैं अपने यहां रख लूं। निकल जाओ, मेरे यहां कोई जगह नहीं है। राम जी ने देखा कि मेरे विषय में ये बात, मैं मुझे नहीं जानते लोग और सीता के विषय में नहीं जानते। मेरा और सीता का तो ऐसा अविभाज्य संबंध है, न तो सीता मुझसे कभी अलग हो सकती है न मैं कभी सीता से अलग हो सकता हूं। लेकिन उन्होंने हमारे इस चरित्र के अंदर ये देख लिया कि सीता दूसरे के घर में रही, तो देखा कि भाई अब व्यवहार तो सब प्रकार का होता ही है, तो व्यवहार में अपने को और ज्यादा सावधान होना चाहिए। और भी लोगों से कई प्रकार की बात सुनी तो फिर उन्होंने सीताजी का त्याग किया। सीताजी का त्याग किया किस लिए किया भाई? लोग कहते हैं सीताजी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। सीताजी का त्याग करके अच्छा क्यों किया कि जो सीता जी के लिए रोए थे तो लोग कहने लग जाते हैं कि क्या करें भाई, राम जी भी अपनी स्त्री के लिए रोए तो हम भी रोते हैं। तो राम जी ने कहा अच्छा हमने त्याग किया, तुम भी त्याग करके देखो, है छाती पर तुम्हारी हिम्मत तो ऐसा करके देखो। उस समय में लोग चुप हो जाते हैं। तो अरे हमारे हमारे एक लीला को तुम देखते और दूसरी लीला को तुम देखते ही नहीं। यदि राम जी त्याग नहीं करते तो संसार में और ज्यादा स्त्री में आसक्ति हो जाती पुरुषों की। इसलिए राम जी ने देखा कि अपने त्याग की भी लीला बताओ। तब उन्होंने त्याग की लीला बताई। सीता गर्भवती थी, वो वशिष्ठ जी के आश्रम में रही, लव और कुश उनके पैदा हुए। उसके बाद सीता जमीन में चली गई। अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण के बेटा थे, तक्ष और पुष्कल भरत के बेटा थे, सुबाहु और सुतसेन शत्रुघ्न के बेटा थे। भरत जी ने गंधर्वों को हराया और उन्होंने वहां का जो धन था वो लाकर के अर्पित कर दिया, भगवान के अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने जाकर लवणासुर को जीत लिया तो मथुरा का राजा शत्रुघ्न को बना दिया। इस प्रकार से ये रामचरित्र है। देखो इस रामचरित्र में सबको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्री पुन प्रसंग एतादृक सर्वत्र त्रासमाहवे। संसार में जो परस्पर में आसक्ति होती है ये आसक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है, इसलिए मनुष्य को आसक्ति से दूर रहना चाहिए। 13,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, भक्तों को आनंदित किया। और परीक्षित, भगवान का जो यश है इतना पवित्र है, इतना उज्ज्वल है कि ये लोकालोक पर्वत के पीछे जो चार दिव्य हाथी हैं काले काले, वे हाथी भी जब राम जी का चरित्र सुनते हैं तो वे भी सफेद हो जाते हैं। तो फिर मनुष्यों का पापों से भरा हुआ कालुष्य पूर्ण हृदय है वो क्यों नहीं स्वच्छ होगा? रामचरित्र से सबका हृदय का मैल है, वो मैल नदी के प्रवाह के समान सब बह करके बाहर जो है हृदय उनका शुद्ध हो जाता है, बह जाता है। तो ये आपने राम जी का चरित्र पूछा सो बताया है। आनृशंस्य परो राजन कर्म बंधेर विमुच्यते। राम जी का चरित्र सुनता है तो उसमें सत्यता आती है, निष्ठुरता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। राजा कहने लगे महाराज राम जी का क्या क्या बर्ताव था? कहते राम जी का बर्ताव बड़ा अच्छा होता था। राम जी ने कभी यह नहीं समझा कि अयोध्या का राजा मैं हूं और मेरे नीचे भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, ऐसा कभी नहीं समझा। वो यही समझते थे कि इस अयोध्या के हम चार राजा हैं और चार राजा हैं, अर्थात इनकी बात रखते हुए वे चलते थे। राम जी के दर्शन के लिए अयोध्यापुरी ऐसे लालायित रहती थी, बड़ा भारी उत्सव मनाती थी। जब कभी राम जी महाराज महल से अयोध्या के बाहर जाते या बाहर से वो महलों में आते थे, सारी अयोध्या के राजमार्ग सड़कों को धो दिया जाता था, बड़े इत्रादि पदार्थ सब जगह छिड़क दिए जाते थे, सड़कों के ऊपर प्रकाश कर दिए जाते थे, उनके ऊपर बराबर फूलों की वर्षाएं होती रहती थी और वहां अयोध्यावासी निर्निमेष दृष्टि से उनके पावन दर्शन किया करते थे। ततः प्रजा वीक्ष पतिम चिरागतम दिदृक्षयो श्रेष्ठ गृह स्त्रियो नरा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राम जी की सवारी निकलते हुए देखते तो घर बार छोड़ छोड़ करके सड़कों पर आकर के इकट्ठे हो जाते थे। इस प्रकार से राम जी की लोग प्रतीक्षा करते थे, दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करते थे। राम जी महाराज ने भी अपने राज्य में किसी प्रकार से अधर्म को आने नहीं दिया और उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद भगवान जैसे यहाँ अवतार की लीला भगवान की बड़ी विचित्र है, प्रकट होने की लीला विचित्र है, ऐसे ही भगवान की तिरोधान होने की भी बड़ी विचित्र लीला है। फिर वे भगवान अपने धाम में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुश का लड़का अतिथि हुआ, अतिथि के निषिद्ध हुआ, उसके पुंडरीक हुआ, उसे क्षेम धनवा हुए, ऐसे इस प्रकार से बहुत विचित्र वंश चला है। कहते हैं इन्हीं में ही आगे जाकर मरु नाम के एक राजा हुए जो इस समय में कलाप ग्राम में रह रहे हैं। ध्यान देना, सूर्यवंश चल रहा है। सूर्यवंश में क्यों विवस्वान नाम सूर्य का ही है, तो सूर्यवंश में मरु नाम के जो राजा हुए वो कलाप ग्राम में है। कलयुग के अंत में जब सूर्यवंश नष्ट होगा तो ये मरु ही अपना अपने वंश को चलाएंगे। और इसी के अंदर आगे जाकर के सुमित्र नाम के राजा होंगे और अंत में इनके सुमित्र के बाद ये सारा शासन सूर्यवंश है ही समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको एक कथा और सुना देते हैं कि इक्ष्वाकु का लड़का हुआ था निमि। एक बार उसने यज्ञ करने की ठान ली कि यज्ञ करना है हमको। उन्होंने अपने गुरुजी वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज हमको यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो अभी तो हम इंद्र का यज्ञ करा के आएंगे, उसके बाद तुम यज्ञ कर लेना। कि महाराज बाद का क्या पता, जो इस समय में अनुष्ठान चल रहा है उसका लाभ ले लेवे, न जाने कब मर जाना पड़ जाए, कब वो होवे न होवे, महाराज आप तो हमारा अभी ही यज्ञ करा दो। कि भैया अभी तो हमने उनको वचन दे रखा हम इंद्र का यज्ञ कराएंगे, उसके बाद आकर के कराएंगे। क्या अच्छी बात। तो वशिष्ठ जी चले गए इंद्र का यज्ञ कराने के लिए। पीछे से इन्होंने आके यज्ञ कराया, इन्होंने यज्ञ छेड़ दिया और यज्ञ में उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला लिया, बुला करके यज्ञ चालू कर दिया। यज्ञ चालू किया, इधर वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ पूरा करके अपने शिष्य के पास आए, निमि के पास आए, तो देखा कि इन्होंने तो यज्ञ चालू करवा लिया किसी और से। तब उन्होंने साफ दिया कि राजन तुमने हमारी बात नहीं मानी, दूसरों को गुरु बना लिया, मेरे जीते जी हम तुमको साफ देते हैं, जाओ तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम मर जाओ। तब आप तो साफ दे दिया। तो साफ देने के बाद में फिर राजा निमि ने भी साफ दे दिया कि गुरुजी हम बिल्कुल धर्म की बात सोच रहे थे और आपके द्वारा गलती हुई है, आपने ऐसा किया तो हम भी आपको साफ देते हैं, जाओ आपका भी शरीर नहीं रहेगा। अब राजा निमि भी मर गए और वशिष्ठ जी भी मर गए। राजा निमि को तो एक कड़ा में रखा गया, तेल के कड़ा में रखा गया, और वशिष्ठ जी हैं वो मित्रा वरुण के यहां पैदा हुए, उर्वशी के यहां पैदा हुए थे। बड़े सुगंधित पदार्थों में निमि का शरीर रखा गया। देवता लोग आए और देवताओं ने राजा निमि से कहा कि देखो राजन आप कहो तो हम आपको जिला देवे। उन्होंने कहा कि जिला के क्या करोगे, आप ऐसा तो जिला नहीं सकते कि शरीर दृष्टि से सदा ही अमर रहूं, जो मेरा नहीं मरने वाला तत्व है वो तो कभी नहीं मर सकता है, और जो मेरे पास मरने वाला तत्व है वो तो कभी न कभी जरूरी मरेगा, तो ये जीने के लिए प्रयास करना और मैं थोड़ा सा और जी जाऊं ऐसी झूठी लालसा रखना जीवन में कोई अर्थ नहीं रखता है देवताओं, इसलिए मैं जीने की इच्छा नहीं करता हूं। तो क्या अच्छी बात है, तो आप हमको ऐसी जगह रख सकते हो जहां पर हम रह जाए। कहा अच्छा ठीक बात है, विदेह उष्यताम कामम लोचनेशु शरीर नाम, लोगों के जो नेत्रों के पलक है यहाँ खाली जगह है, ये इस हड्डी के भौंक है और पलक के बीच में एक खाली जगह, उस खाली जगह पर हम तुमको निवास दे देते हैं। अच्छी बात है, वहां पर राजा निमि ने निवास कर लिया। अब राजा निमि का शरीर था, उस शरीर का मंथन किया गया तो उससे एक पुरुष पैदा हुआ, उसका नाम मैथिल रखा, मंथन से पैदा हुआ ना, और उसका नाम जनक भी रखा, क्योंकि वो जन्मना जनक है स्वभूत, वो शरीर से पैदा हुआ इसलिए उसका नाम जनक रख दिया। ये जनक है, मैथिल है, ये एक उपाधि है। ये निमि के बाद जो भी कोई वहां शासक हुए सब ये जनक ही कहलाए, मैथिल कहलाए। कहते हैं मैथिल है या जनक है या विदेह है, क्योंकि देह रहित से ही पैदा हुए इसलिए उनका नाम विदेह। कहते हैं उनके फिर आगे वंश चला है, इसी वंश में शिरध्वज नाम के बहुत अच्छे राजा हुए थे। एक बार यज्ञ कर रहे थे तो उनको यज्ञ के लिए उन्होंने भूमि का शोधन किया, तो भूमि का शोधन किया, वहां खेती की, तो उनके हल में से एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई, इसलिए उसका नाम सीता रख दिया। और वे शिरध्वज राजा थे, उन्होंने सीता का विवाह इसी राम जी के साथ किया था। उनके कुशध्वज और भाई थे, उनके भी वंश चले हैं। इस वंश में इतने अच्छे अच्छे सम्राट हुए हैं, क्या बतावे। सब योगेश्वर प्रसादेन द्वंदेर मुक्ता गृहेश्वपी, ऐसी कृपा थी इनके ऊपर योगेश्वरों की, भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि सब घर गृहस्थ में रहते हुए भी इनके ऊपर कोई घर गृहस्थी का प्रभाव नहीं पड़ता था। सब द्वंद्वों से वे निर्मुक्त थे और आत्मविद्या में सब निपुण थे। इस प्रकार से हमने आपको ये सूर्य वंश सुना दिया है। अब हम आपको चंद्रवंश सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन सुनाने के बाद अब चंद्रवंश सुना रहे हैं। कहते हैं कि राजन बड़ा पवित्र ये चंद्रवंश है, जिसमें अहिल आदि बड़े विलक्षण पुण्य कीर्ति राजा हुए हैं। भगवान सहस्र शीर्षा के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि पैदा हुए और अत्रि से सोम पैदा हुए, माने चंद्रमा पैदा हुए थे। चंद्रमा को संपूर्ण औषधियों का, नक्षत्रों का स्वामी बना दिया, इस कारण चंद्रमा को बड़ा अभिमान हो गया। एक बार चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा थी उसका हरण कर लिया। देवगुरु का ये अपमान देवता सहन नहीं कर सके, तो देवताओं ने चंद्रमा पर चढ़ाई कर दी और साथ ही साथ शुक्राचार्य जी बृहस्पति से द्वेष करने वाले थे, तो उन्होंने चंद्रमा की सहायता के लिए असुरों को भेज दिया। इस प्रकार से देवासुर संग्राम हुआ। अंत में फिर ब्रह्मा जी ने अंगिरा को भेज करके ये युद्ध बंद करवाया और शांति स्थापित की। इधर ब्रह्मा जी ने फटकारा भी चंद्रमा को कि तू आप बृहस्पति की स्त्री क्यों लेके आया है, वापिस दे दे उसे। इतने में तारा के एक बहुत सुंदर लड़का हुआ। वो लड़का इतना सुंदर था कि बृहस्पति ने कहा कि ये मेरा है, चंद्रमा ने कहा ये मेरा है। तब फिर उस लड़के ने अपनी माँ से ही पूछा कि माँ बताओ मैं किसका बेटा हूं। तो माँ ने कहा कि भाई तुम चंद्रमा के बेटा हो। तो फिर उसका नाम बुध रख दिया गया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुध रख दिया और उसी बुध के द्वारा ये सुद्युम्न जब इला बन गया, स्त्री बन गया, तो उससे पुरुरवा पैदा हुए। आप ध्यान से सुने, पुरुरवा है बड़े विलक्षण राजा हुए, अपने रूप में, गुण में, उदारता में सब जगह उसकी कीर्ति फैली हुई थी। उर्वशी ने स्वर्ग के अंदर नारद जी से ये सुना कि पृथ्वी का राजा बहुत ही सुंदर है, तो वह उसके ऊपर मुग्ध हो गई। और एक बार वह भेड़ के बच्चों के साथ उर्वशी पुरुरवा के पास आई, तो राजा ने पूछा कि आप कौन है, आश्यताम करवाम किम, हम आपका क्या काम कर सकते हैं बताइए। यदि आप हमारे पास रह सकती हो तो वैसा वचन दे दीजिए। तो उर्वशी ने कहा देखो आप लोग इतने श्रेष्ठ कीर्ति वाले हो और हे पुरुरवा जी आपका इतना दिव्य रूप है, इस कारण से आपके पास रहने में मेरा गौरव बढ़ेगा। एक बात है, मेरी तीन शर्त आपको माननी होगी। एक तो मेरे पास ये जो भेड़ के बच्चा है इनको कोई ले ना जावे, इसका ध्यान रखना होगा। दूसरा, मैं घी पी करके रहती हूं, मेरा खाद्य केवल घृत है। और तीसरा है कि मैं उचित जगह के बिना कभी भी आपको वस्त्र रहित नहीं देख सकती। इस प्रकार से ये तीन शर्तें यदि हमारी मान लेंगे आप तो हम आपके पास रह जाएंगे। तीन में एक भी शर्त यदि पूरी नहीं हुई तो हम यहां से चले जाएंगे। ध्यान देवे, पृथ्वी के राजा में कितनी विशेषता कि इंद्र को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर के वो यहां आई। यही बात बतानी थी, राजाओं में कितनी विचित्रता थी। वो पूर्णवा के वहां रहने लग गई उर्वशी, इधर उर्वशी के बिना इंद्र को चैन नहीं मिला वहां स्वर्ग में, तो उन्होंने गंधर्वों को भेजा। रात्रि के समय में गंधर्व आए और वे उस भेड़ के बच्चों को चुरा लिए। अब वो भेड़ के बच्चे जोर जोर से रोने लगे तो तलवार लेकर के वो भेड़ के बच्चों की रक्षा के लिए निकला पूर्णवा। तो वहां पर उसके कोई वस्त्र नहीं थे तो उर्वशी ने कहा कि देखो, दो बात हो गई। एक तो तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि हम इनको बच्चों को ले जाने नहीं देंगे, भेड़ के बच्चों को, देखो बच्चे हमारे गायब हो गए, और तुम्हारे वस्त्र नहीं है, इस कारण से इन दोनों शर्तों को तुम नहीं माने हो तो हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के चली गई। अब उर्वशी के बिना पूर्णवा की बेचैनी बढ़ी गई थी। तच्चित्तो विबल शोचन, उर्वशी के विषय में हरदम शोक करता रहा, उन्मत्त की तरह से पृथ्वी पर भटकता रहा। एक बार कुरुक्षेत्र में वह गया पूर्णवा, और वहां उसने उर्वशी की पांच सखियों के बीच में उर्वशी को देखा। देखते ही उर्वशी से कहा कि देखो उर्वशी, हमसे गलती हो गई, अब तुम हमारे महल में रहो। तो उर्वशी ने कहा, देखो राजन, हम एक बार जो बात कर लेते हैं सो कर लेते हैं, हम लोग स्वर्ग की स्त्रियां हैं, हम पर ऐसा मुंह करना भी नहीं चाहिए। हम लोगों पर जो बाहर की दृष्टि से मोहित होता है उसको हर दृष्टि से ठोकर खानी पड़ती है, इसलिए एक बात हम आपको बोल देते हैं कि साल में एक दिन आपसे मिलेंगे और उससे आपका वंश है वो बढ़ता रहेगा। वह उर्वशी से मिलकर अपने महल में आ गया। उस समय में उनको गंधर्व मिले, पूर्णवा को गंधर्व मिले, तो गंधर्वों ने गंधर्वान उपधावे माम, उर्वशी ने कह दिया था कि इन गंधर्वों की सेवा करोगे तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तब गंधर्वों की स्तुति की तो गंधर्वों ने एक अग्निस्थाली दे दी। अग्निस्थाली क्या है? एक ऐसा पात्र दिया कि जिसमें अग्नि प्रज्वलित करने पर उर्वशी लोक की प्राप्ति होती है। उर्वशी लोक का जो पात्र है वो अग्नि स्थाली है, तो वो अग्नि स्थाली दे दी कि इसमें तुम अग्नि रख करके उर्वशी लोक की कामना रखते हुए यज्ञ करो, तुमको उर्वशी के साथ नित्य संयोग मिलेगा। तब वो अग्नि स्थाली को लिया और विचार किया कि ओहो, इससे मुझे उर्वशी मिलेगी, उर्वशी मिलेगी, उर्वशी मिलेगी। तो वह उर्वशी के ध्यान में उस अग्नि स्थाली को जंगल में ही छोड़ दिया और महल में आ गया। कुछ दिन निकला तब फिर विचार आया कि ओहो, वो पात्र था, उससे तो मुझे उर्वशी प्राप्त करनी थी। वो जंगल में उसी जगह गया। वहां गया तो देखा कि एक वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष है, समी वृक्ष है, और उस वृक्ष के अंदर पीपल उगा हुआ है। तब उसकी लकड़ी ली और लकड़ी लेकर के दो लकड़ियां लेकर के, और उनमें एक की उर्वशी की कल्पना की, एक की पूर्णवा की कल्पना की, और उससे फिर अग्नि को प्रज्वलित किया। उसके बाद से अग्नि के तीन विभाग हुए हैं, और उसके बाद से ही वेदत्रयी में जो अग्नियों का हवन वगैरह होता है वो उस समय से चालू हुआ। उस अग्नि को पुत्री मान लिया। उर्वशी लोकम अन्विच्छन् सर्वदेवमयम् हरिम्, उर्वशी लोक की इच्छा से उसने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान की आराधना की। तो देखो राजन, पहले एक ही वेद था, एक ही प्रणव मंत्र था और नारायण का भी एक ही रूप था। ये तरह तरह के देवताओं की उपासना नहीं होती थी, एक ही अग्नि था और लोगों का वर्ण भी एक ही था। पूर्व के कारण से त्रेता युग के प्रारंभ में तीन तो वेद हो गए, तीन ही अग्नियां हो गई और फिर चार ये वर्ण हो गए, सब उसके बाद हुए हैं। तो उसी पूर्वा के छह बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। दूसरे शब्दों में हम कहें कि बस केवल कुल मिला के इन्हीं का ही सब कुछ विस्तार है आगे तक, तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। इनमें श्रुतायु के विषय में बताते हैं कि श्रुतायु के वसुमान हुए, वसुमान के सत्यायु हुए, रय के एक हुआ और जयश्च तनयोमित, और जय हुआ, तनय और अमित हुए, विजय के भीम हुए। इस प्रकार से इनका वंशला जिसमें जन्नु हुए, ये वही जन्नु है जिन्होंने सारी गंगा जी को चलू में पी लिया था और फिर जिन्होंने वापिस कर दिया, वापिस प्रकट कर दिया, तो इसलिए गंगा जी का नाम जानना भी पड़ा। गंगा जी ने जन्नु को अपना पिता मान लिया था। जन्नु के पुरु हुए और उसके बलाक हुए, उसके अजक इत्यादि पैदा हुए थे। कहते हैं कि ततः कुशय कुशस्यापि, इनमें जो कुश हुए उसके, ततः कुशय कुशस्यापि कुशाम्ब, कुश पैदा हुए अजक के और उस कुश के हुए कुशाम्बु, तनयु, तनय, वसुर, कुशनाभ, ये चार लड़का हुए कुश के। उनमें कुशाम्बुज के लड़के थे गाधी, गाधी के सत्यवती नाम की एक कन्या थी। उस कन्या की सुंदरता को देख करके ऋचिक नाम के ऋषि ने प्रार्थना की कि सत्यवती हमको दे दो। तो कहा कि भाई आप ऐसा करो कि 1000 ऐसे घोड़े लेके आओ कि जिनका रंग पूर्ण सफेद है, केवल एक कान ही उनका काला हो और सारा का सारा रंग सफेद हो। ऐसे घोड़े मिलते नहीं है, एक भी घोड़ा मिलना मुश्किल, तो तुम 1000 घोड़े लेके आओ। तब कहते हैं अच्छी बात है, ऋचि के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वरुण देवता को संतुष्ट किया और 1000 घोड़े लेकर आ गए कि लीजिए घोड़े। तब गाधी ने देखा कि मेरी कन्या के लिए ये योग्य पति है, सत्यवती का विवाह फिर ऋचि के साथ कर दिया। अब सत्यवती के कोई भाई नहीं था और सत्यवती के पीहर में ये बात फैल गई कि सत्यवती का पति है, ये बहुत बड़ा भारी ज्ञानी है, बड़ा भारी तपस्वी है और सब प्रकार से ये अपने वचनों से, सिद्धियों से बहुत कुछ कर सकता है। तब एक बार की बात है, सत्यवती की माँ आई और माँ ने आके ऋचिक से कहा, अपने जवाई से कहा कि हे जवाई राज, आप ऐसा करो कि मेरे लड़का होना चाहिए, ऐसा कोई आप अनुष्ठान बताओ। तो उन्होंने अपने लड़के के लिए, माने सत्यवती के लड़के के लिए और सत्यवती की माँ के लड़के के लिए, दो अलग अलग चरु पकाए, उनके अंदर औषधियां है, जल है रख दिया, खीर और एक पदार्थ बना दिया और कह दिया कि भाई एक सत्यवती का है, सत्यवती की माँ का है, इसका सेवन करने से आपके लड़के हो जाएंगे। वह तो किसी काम से बाहर चले गए। पीछे से सत्यवती की माँ ने देखा कि ऐसा कौन पिता होगा जो अपना लड़का अच्छा नहीं चाहेगा, अपना लड़का तो बहुत अच्छा ही चाहेगा। तो उसने फुसला करके बेटी से कहा, बेटी तुम्हारा चरु तो मेरे को दे दो, मेरा चरु तुम ले लो। तो बेटी ने कहा, माँ इसमें कौन सी बात है, आप ये ले लो। तो श्रेष्ठम मत्वा तया यच्छत् मात्रे मातुर अदत् स्वयं, तब उसने माता के लिए दे दिया अपना चरु और माता का चरु स्वयं ने ले लिया। अब इधर मुनि बाहर आए, बाहर से आए, आयर पूछा, क्यों भाई आप लोगों ने अपनी अपनी जगह, अपना अपना पात्र ले लिया? तो सत्यवती ने कहा कि पतिदेव, मैंने तो अपना पात्र उनको दे दिया, उनका पात्र मैंने ले लिया। अरे भाई ये तो बड़ी भारी गलती हो गई, तुम्हारे एक बहुत बड़ा भारी दंड देने वाला बेटा होगा, बड़ा उससे लोगों को कष्ट होगा, सबको वो कष्ट देने वाला होगा। कि महाराज ऐसा, मेरे तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे वंश में तुम्हारा पोता हो जाएगा, क्या पोता हो जाएगा तो फिर हम क्या हो जाएगा। तो फिर उस सत्यवती के जमदग्नि हुए और जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ हुआ और उससे फिर आगे जाकर परशुराम जी हुए। ये साक्षात भगवान वासुदेव के अंश थे और त्रिसप्त कृत्वो यह इमाम, और इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को कपा दिया, नाश कर दिया। क्षत्रिय बिचारे इनके नाम से डरने लग गए, कहते हैं ऐसा ऐसा इन्होंने पराक्रम दिखाया परशुराम जी ने। राजा पूछने लगे कि महाराज ये 21 बार क्षत्रियों को नष्ट किए तो क्या अपराध हो गया था क्षत्रियों का। कहते हैं देखो जिस समय में परशुराम जी ने अवतार लिया उस समय में सहस्रार्जुन का शासन चल रहा था, 1000 उसकी भुजा, इसलिए उसको सहस्रार्जुन बोलते थे। भगवान नारायण के समान उसका पराक्रम, और दूसरे शब्दों में कहें कि नारायण का अंश जो दत्तात्रेय है उससे उसने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। कहते हैं उन दिनों में रावण का राज्य भी चलता था तो इस दत्तात्रेय के द्वारा इसमें कई प्रकार की सिद्धियां आ गई, ऐश्वर्य आदि गुण आ गए, अणिमा आदि सिद्धियां आ गई, तो सब जगह ये सहस्रार्जुन बिना किसी बाधा के फिरता रहता था, जैसे पवन है वायु है ये फिरता है। एक बार की बात है कि सहस्रार्जुन रेवा तट पर गया स्नान करने के लिए, भगवान शंकर की आराधना करने के लिए, उसके साथ में उसकी रानियां भी थी। वहां वो स्नान करने लगा, स्नान करने लगा तो 1000 भुजा तो थी, रेवा नदी का जल था, उस जल को उसने रोक दिया भुजाओं से, तो प्रवाह यूं चल रहा था उसको रोक दिया तो वो वापिस वो प्रवाह ऊपर उल्टा चलने लगा। उल्टा वो प्रवाह चलने लगा तो उधर रावण का तंबू तना हुआ था, उसके मंडप में तंबू में पानी पानी हो गया। रावण देख रहा है ये क्या बात है भाई। रावण उस नदी के सारे सारे दूर तक गया तो देखा कि एक राजा है, 1000 भुजा है, और उसने जल के प्रवाह को रोक दिया और वही पानी हमारे मंडप में आया है। रावण ये सब कुछ समझ नहीं सका कि इतना इसका प्रभाव है। रावण ने उसको फटकारना चालू किया, फटकारना चालू किया तो फिर अब सहस्रार्जुन को क्या देरी लगी, सहस्रार्जुन ने अपने बाणों से उसे युद्ध करके उसको कैद खाने में डाल दिया। और जब कैद खाने में डाल दिया तब उसके पिताजी आए, जैसे तैसे रावण को छुड़ा करके ले गए। एक बार यही सहस्रार्जुन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और वह घूमते घामते अचानक जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। जमदग्नि ने राजा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। अब संतों के पास में और तो कुछ स्वागत की सामग्री होती नहीं, काम धेनु को अपने पास में रखते हैं ताकि जिससे लौकिक अलौकिक सारे कार्य पूरे कर ले, उनके पास में काम धेनु थी। सब सेना का स्वागत कर दिया, खाने पीने की चीजें दे दी, घोड़ों को घोड़ों के खाने की चीज, ऊँटों को ऊँटे के खाने की चीज, मनुष्यों को मनुष्यों के खाने की चीज। एक गाय से पैदा होते देखा तो सहस्रार्जुन के मुंह में पानी आ गया कि ये गाय तो हमको मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। उसने ऋषि से प्रार्थना की कि ऋषिवार ये गाय हमको दे दो। ऋषि ने कहा देखो भाई गाय हमारे पास रहने दो, तुम ले जाके करोगे क्या, क्या हमारे राज्य में काम आएगी, तो हम भी तो तुम्हारे ही राज्य में बैठे हैं, हमारे काम आ रही है, तुम ये समझो कि चलो हमारे ही आ रही है, मेरे काम आ रही वो तुम्हारे ही तो काम आएगी। परंतु वो माने नहीं, जबरदस्ती कामधेनु को ले गए। कामधेनु को ले गए, इधर परशुराम जी गए हुए थे बाहर, उनको मालूम चला तो रामे आश्रम में आ गए थे। वे अपने आश्रम में आए और जब उन्होंने पिताजी से सुना कि सहस्रार्जुन ने इस प्रकार से कामधेनु को छीन करके ले गया है, तो अब अपने हाथ में फरसा लिया, अकेले ही वहां से हुंकार करते हुए चले गए उसकी बारिशमती नगरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए।